इसके बाद दूसरी सूरत आले इमरान, तवील सूरतों में भी इसका दूसरा नंबर है। तरतीब में आप देख रहे हैं कि सूरत बकरा के फौरन बाद है, और इसकी 1 से 91 आयात हम इस पारे में पढ़ते हैं। दोनों में बड़ा रब्त है। हमने सूरत फातिहा में दुआ की थी गैरिल मखदूबी अलैहिम, उस पे सूरत बकरा में काफ़ी बातें हो गई, वलद्दालीन पे इस सूरत में बात होगी। टोटल 200 आयतें हैं इसमें। मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसकी शुरू की जो 83 आयात है, यानी 83 आयात है ना, ये एक ख़ास मौके पे नाजिल हुई थी, जब नजरान से नसारा का एक अहद वफद था, अल्लाह के नबी के पास आया 9 हिजरी में कि हमें इस्लाम बताइए क्या है। तो फिर इसमें आप फील करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और बाद में फिर उनको दावत मुबाहला भी दी गई। आपके मेरे लिए ये सूरत क्या है, अगर ज़रा से सूरत के मजामीन का हम तज़िया कर लें, और ये छोटे छोटे स्लॉट्स आपको इस सूरत को समझने में मदद देंगे। पहली 32 आयतें, 1 से 32 तमहीद है, यानी बेस बनाई जा रही है। फिर आयत 33 से 63 में ईसाइयों के गुमराह कुन तसव्वुरात की नफी है, वही वफद नजरान को बताया जा रहा था। फिर आयत 64 से 101 में तहवील उम्मत का मजमून है, यानी इंशाल्लाह हम जब इन आयात पे जाएंगे तो आप इन सारी बातों को समझेंगे। फिर आयत 102 से 120 में अहले ईमान के लिए जामे हिदायत भी हैं, और अहले किताब की मुसलमानों से दुश्मनी की भी बात है। आयत 121 से 180 जो तवील हिस्सा है, ये गज़वे उहद के हालात पर तबसरा है। और आयत 181 से 200 में अहले किताब के गुमराह कुन तसव्वुरात की नफ़ी भी है, और अहले ईमान के लिए हिदायत है। यानी गोया कि ये एक नट शेल में आपको पूरी सूरत का खुलासा मिल गया। आइए ज़रा इसको वन बाय वन डिस्कवर करते हैं। पहली 6 आयात, 1 to 6, ज़ातो सिफाते बारी ताला का बयान, अल्लाह ताला है क्या, कौन है। और आप देखेंगे कि सूरत बकरा और सूरत आल इमरान में रब्त है, दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही हैं, और दोनों में शुरू में तौहीद का जिक्र है, और दोनों के एंड पे आप देखेंगे दुआएं हैं। सूरत आल इमरान की खास बात क्या है कि इसमें दुआएं बहुत हैं, इसमें एक भी हुक्म नहीं है। सूरह बकरा में तो बहुत सारे अहकाम थे, बड़ी पोलाइट सी सूरह है। तो शुरू होती है अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे आयतुल कुर्सी शुरू हो गई। और इसमें शुरू में ही आप देखिए कि तौरात और इंजील की भी बात है, क्योंकि जब किसी को भी कोई दीन की बात सिखानी होती है ना, तो उनकी बात भी करनी है। अल्लाह ताला की सिफात देखिए, तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। आपको मुझे अपनी सूरत पे कभी भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कभी किसी की शक्ल को डिस्कस ना कीजिए, कौन खूबसूरत होगा या आपके ख्याल में बदसूरत होगा, मुजक्कर होगा कि मुअन्नस, यानी बेटा होगा कि बेटी होगी, नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, मुकम्मल होगा या नामुकम्मल, यानी नाकिसुल खिलकत होगी या तामुल खिलकत, यानी बाज़ दफ़ा हैंडीकैप्ड लोग हो जाते हैं। ये सारे मामलात अल्लाह ने माँ के पेट में ही डिसाइड कर दिए। तो आप और मैं अपने लिए लिखिए कि हम अल्लाह का फैसला हैं, इसलिए कभी ज़ाहरी शक्ल सूरत पे बात ना करें। अफसोस की बात है कि हमारे कल्चर में 3 मौके पे शक्ल सूरत की बहुत बात होती है। बच्चा पैदा हुआ कैसा है, उसके नाक से लेके कानों बालों सबको जोड़ते हैं रिश्तेदारों के साथ, फिर दूसरा शादी का मौका, और तीसरा मैयत, मैयत पे नूर था कि नहीं। इन सब चीज़ों से ऊपर आ जाइए। इसीलिए फिर आगे आयत नंबर 7 से 9 में फितना पैदा करने वालों का तर्ज़ अमल बताया जा रहा है। यानी कुछ लोग कुरान पढ़ के हिदायत ले लेते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ के हिदायत लेते हैं, और कुछ गुमराह भी होते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में ना करे। आयत में हुवल्लज़ी से बात शुरू करके दो लफ्ज़ अगर आप हाईलाइट करें, आयातु मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात, याद रखिए कि कुरान पाक को जब भी आप डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो आपको दो तरह की आयतें दिखेंगी। एक को कहते हैं मुहकमात, हुक्म वाली, सीधी सीधी, अकीमुस्सलाह, आतु ज़का, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, किसी चीज से कभी रोक दिया जाता है, इसमें अमूमन अहकाम होते हैं, किस्से होते हैं, हकायतें होती हैं, जिनका मफहूम बड़ा वाज़े है, प्लेन आयतें, जैसे आप कुरान में पढ़ते हैं, और अभी सूरह बकरा की बहुत सी पढ़ चुके हैं। दूसरी आयतें जिनको आप मुतशाबिहात कहते हैं, शुबा लगता है, ये क्या है जो आपकी अकल से ऊपर है। جن کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ سکتے، مثلا اللہ کی ہستی، اللہ کیسے ہے، عرش کیسا ہے، قضاء و قدر، تقدیر کیسی ہوگی، کیا ہوگا، جنت جہنم. اب یہ دو قسم کی آیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک اللہ نے آپ کو اس دنیا کے مسائل بتائے اور دوسرے اگلے جہان کے لیے باتیں ہیں. لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، تو وہ شبے والی باتوں پہ بہت بات کرتے ہیں، اسی لیے پھر دلوں کے ٹیڑھ پن اور فتنے پیدا جو ہو جاتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہاں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آج کے دور میں اس دعا کو یاد کرنا، شعور سے بڑھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ بڑے غیر مخصوص طریقے سے اپنے بچوں کو یہ آیتیں پڑھوا دعائیں یاد کرا دیں، کیونکہ باہر کی دنیا میں بہت سے فتنے ہیں. جب سے سوشل میڈیا عام ہوا، گیجٹ ہاتھوں میں آ گئے، غیروں کے افکار نظریات ہماری نسلوں کے اوپر مسلط کیے گئے، تو یہ دعا شعور کے ساتھ مانگنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 میں کفار کے لیے وعید ہے، یعنی جو اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس جو خاص طور پہ اللہ کو نہیں مانتے نا، ان کے پاس مال اور اولاد بہت ہوتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تسلی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ایسا ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ فرعون دنیاوی دولت کا سمبل تھا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ پانی میں ڈوبا. تو دنیا کی دولت اور مال دوسروں کا دے کر رشک نہیں کرنا. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا، ان کے مال اور اولاد ان کو فائدہ نہیں دیں گے. یاد رکھیے کہ حق اور باطل کا مارکا ہمیشہ کام ساتھ ساتھ چلا، لیکن فتح ہمیشہ حق کو ہوئی. تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا کو ضرورت کا لیجئے، آخرت کو ہمیشہ کا رکھیے. پھر آیت نمبر 14 سے 15 میں دنیا بمقابلہ آخرت، اس کا یہ تھیم لیجئے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی اس میں گن گن کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پوائنٹر رکھ کے، اللہ نے ہمارے ویک پوائنٹس دے دیے. بیٹے بھی اچھے لگتے، خزانے، سونا، چاندی، گھر اور انعام، یہ سارا کچھ بتا دیا. ذالک متاع الحیات دنیا. کیا پتا چلا کہ یہ بتانے وہم و گمان ہے، دل لگتا ہے ان چیزوں میں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پھر بنائی کیوں؟ تو یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ شہوات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مشتحیات، وہ چیزیں جو طبعی طور پہ بندے کو اچھی لگتی ہیں، اس میں رغبت ہوتی ہے. یہ بری بات نہیں، بیٹوں سے محبت کرنا، بیویوں سے محبت کرنا کوئی بری نہیں. اللہ کے نبی کو تو خود بہت محبت تھی، ٹھیک ہے. اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں سے محبت کی جائے، لیکن دل میں کیا ہو کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. دنیاوی اسباب کو درست طریقے سے استعمال کیجئے اور آخرت کے لیے مفید بنائیں. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ دنیا کا مال اسباب آخرت کی کشتی کو چلانے کا پانی ہے، لیکن اگر وہی پانی زیادہ بھر جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا. تو آسان لفظوں میں جو بات ہے آپ کے میرے لیے وہ یہ ہے، دنیا میں آپ کو جو بھی نعمت ملی ہے نا، اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں. یہ چپو ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا، اور اصل کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. پھر آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں کیا ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا. آپ بھی اور میں بھی اپنے لیے اس کو دعا کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور وہ کون ہے؟ الصابرین والصادقین. کچھ خوبیاں ہیں، صبر کیجئے، سچ بولیے، اللہ کے آگے قنوت یعنی عاجزی اور دوام رکھیے، اور پھر منفقین خرچ کرنے والے، اور مستغفرین بالاسحار سحریوں کے وقت دعائیں مانگنے والے. اگر آپ اس پورے سنیریو کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایمان والے کو ہر وقت فکر لگی ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ نیکی تو کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ جو صابرین اور صادقین ہیں، آج اس کو اپنے لیے گول بنائیے. اگر آپ ان ساری آیتوں کو ایک فلو چارٹ میں دیکھیں نا، تو ان آیات میں محبوب بندوں کی 5 صفات ہیں. جلدی سے نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. नंबर एक साबिर, रास्तवास, सच बोलने वाले, शरीयत पर अमल करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और नेकियों पर इतराते नहीं, फ़ख्र नहीं करते। इस पे एक हदीस भी अल्लाह के नबी की सही मुस्लिम में 1772 के जिसमें फरमाया कि बरकत और रिफ़त का मालिक हमारा रब है। यानी सारी बरकत जो आपके माल में, औलाद में, घर में होगी ना, ये अल्लाह की तरफ से है। और हर रात को जब आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है ना, रात का 1/3 यानी आखिरी थर्ड जो होता है, तो उसमें अल्लाह ताला हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं, कौन है जो मुझे पुकारे और मैं इसकी पुकार सुनूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको दूं, और कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको बख्श दूं। क्या पता चला कि दुनिया में कोई बादशाह आपको दिन रात में नहीं देने को तैयार। उनसे मांगे तो वो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे ये अता फरमा दे। इसके बाद आयत 18 में एक बड़ी खूबसूरत बात है और वो क्या है कि अल्लाह सुबहान ताला ने क्या में अदल किया है दुनिया में। दुनिया अदल पे कायम है, आप कह लीजिए शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा में। इस आयत में जो आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी बात है वो क्या है, अल्लाह खुद इस बात की गवाही देता है कि मैं इला हूँ, और फरिश्ते और उलूल इल्म। उलमा कहते हैं कि इल्म की शान जिस तरह इस आयत में बयान की गई है कहीं और नहीं, कि अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के साथ उलूल इल्म, इल्म वालों का जिक्र लिया। तो आप भी और मैं भी दुआ भी करें, ख्वाहिश भी करें, इरादे भी रखें कि हमने इंशाल्लाह इल्म को हासिल करना है। इसके बाद आयत 19 का टॉपिक क्या है, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में भी और आखरत में भी कबूलियत सिर्फ दीन इस्लाम की है। और दीन इस्लाम क्या है, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी है। याद रखिए कि इस्लाम महज मजहब नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजन, बल्कि इस कोड ऑफ लाइफ प्रैक्टिकल है। यानी इस्लाम इज नॉट अ थ्योरी, इस्लाम एक रिटन किताबचे का नाम नहीं है। ये सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने या उमरा करने, हज करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या है, नबी सल्लम की पैरवी करते हुए, इत्तबाए रसूल करते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी का नाम है। जब लोग ना माने तो उनका झगड़ा, आयत 20 में अल्लाह ने कह दिया कि अगर लोग आपसे झगड़ा करते हैं, फिन हा जू का फकुल असलम तो वजह, हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारे चेहरे अल्लाह के आगे झुक जाएं, जिंदगी के हर मामले में हम अल्लाह ताला के साथ हों। इसके बाद आप आयत 21 से 25 में अहले किताब के जराइम है, क्या जुर्म उनसे हो गए थे, इन अल्लज़ीना यकफुरूना से लेके वहुम ला युज़लमून तक की आयतों में अल्लाह ने अहले किताब के जराइम की लिस्ट बता दी। खुलासा कर लें तो क्या बनता है, अल्लाह का पसंदीदा दीन हर दौर में एक ही रहा, हर दौर के नबी ने इस्लाम ही की दावत दी थी। दूसरी बात है कि दीन में इख्तलाफात लोगों की जिद्दबाजी, तासुब और मुफाद परस्ती की वजह से है। यानी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो लोगों को आपस में लड़ाती हैं। फिर अगली बात पता चलती है कि क़यामत के दिन हर शख्स को अपने आमाल का पूरा बदला मिलेगा। ज़रा सोचिए, क्या मैं अपने हर अमल की जजा या सजा पाने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ रंग नस्ल फ़ायदा नहीं देगी, गोरे काले अरबी अजमी का फ़र्क नहीं आएगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 26-7 में अल्लाह ताला की अजमतें हैं, यहाँ फिर दुआ आ रही है। आज तो आप बहुत सारी दुआएं मांगिए ताकि अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों से जो ना दे वो आपकी दुआओं से मिले। और वो दुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वाली दुआ है, बिगैरी हिसाब तक, जिससे पता चलता है कि बादशाह को गधा बना दे, गधा को बादशाह बना दे, तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह। हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसके हर फैसले में भलाई है। तो आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आप तो सबके हालात बदल सकते हैं, अल्लाह आप मेरे भी काम कर दें, बीमार है तो अल्लाह मेरी मुझे सेहत दे दें। दूसरों को क्या कहना, आप अल्लाह से कहिए अल्लाह मुझे सेहत दे दे, औलाद नहीं अल्लाह मुझे औलाद दे दे, घर नहीं अल्लाह मुझे घर दे। जिसको अल्लाह से निस्बत मिल गई, जिसको अल्लाह ताला की शान पता चल गई, उसके लिए तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं रहती। फिर उसके बाद आयत 28 में कुफार को मोमिनों के मुकाबले में दोस्त न बनाने की बात है, ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया। आप देखिए कि लफ्ज़ औलिया یعنی آپ دیکھیں کہ لفظ ولی بہت اہم ہے. آج ہمارے ہاں اس لفظ کو بھی زیادہ سمجھ نہیں پاتے. تو دشمنوں سے یا غیر مسلموں سے تعلقات جائز ہیں, معاملات کر سکتے ہیں, آپ ان کی دکانوں سے چیز خرید سکتے ہیں, اگر وہ کسی تکلیف میں ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن ولی نہیں بنا سکتے. اور ولی اولیاء ایک ہی لفظ ہے, جمع اور واحد کا فرق ہے. ولایت دلی تعلق کو کہتے ہیں, خصوصی تعلق کو, یعنی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی دوستی نہ ہو. یو ول ناٹ لائک دیئر ڈیلنگس, دیئر وے آف لائف. آج ہم مروب ہیں, یعنی غیر مسلموں سے عمدہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے, لیکن دوستی ایمان والوں سے ہوگی. اب آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آپ کو اتنا سمجھ نہ آئے, لیکن باہر کی دنیا میں رہنے والے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جتنا جس کے قریب رہتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں سے کفر کی نفرت ختم ہو جائے, یا ان کے غلط طریقے, مطلب ان کے کپڑے ہیں, ڈریس کوڈ ہے, ان کے طور طریقے بولنے چالنے کے, وہ چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں. اس سے بچنا چاہیے. اور آیت 29 سے 30 میں ٹاپک کیا ہے؟ اللہ انسان کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے. ذرا سا سوچئے, اللہ تعالیٰ کو آپ کی سب باتیں پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. کیسے؟ قلن تخفوا ما فی صدورکم, کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپا لو جو تمہارے سینوں میں, یا ظاہر کر دو, یا علم اللہ. آپ اور میں یہاں بیٹھے کیا ہر ایک کی ہر بات جانتے ہیں؟ آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا کسی کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے. تو پتا کہ چلا کہ اپنے اندر اور باہر کی اصلاح کرو, ورنہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخدرا, کل قیامت کے دن آپ کا میرا ہر اچھا اور برا عمل سامنے لایا جائے گا. اور اس وقت پھر ایک انسان کو حسرت ہوگی کہ میں نے ظاہر کو چمکایا تھا, میں نے دل کو کیوں نہ چمکایا. اور اس دن پھر خواہش کیا ہوگی؟ تبدو ان بینہا و بینہو امدم بعیدا, اللہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں بہت دوری ہو. اور ویحذرکم اللہ نفسہ, یہ دو دفعہ آیت آئے گی ابھی, کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن کو چونکہ جانتا ہے, اور انسان کا ہر نیک اور برا عمل محفوظ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ابھی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا, اب یہ محفوظ ہو گئی. آپ کے میرے نام اعمال میں بھی سب سیف ہو رہا ہے. پھر آئے 31 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تذکرہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یخببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بہت پیارا ٹاپک ہے. اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے. کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو اتباع رسول زندگی کے تمام معاملات میں مطلوب ہے. آپ اور میں بالکل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھیں, کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لائف سٹائل سے گزر رہی ہوں؟ پھر آئے 32 سے پتہ چل گیا, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اطاعت رسول سے اعراض کفر ہے. یعنی شادی, بیاہ, خوشی, غم, ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ اطاعت یعنی بات ماننے کے بغیر محبت کا دعویٰ بالکل دھوکہ ہے. اب بھی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ بڑی نعتیں بھی پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہمارے چلنے میں, پھرنے میں, شادی میں, حال اولیے میں, بچوں کو پالنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اب دیکھیں, سورت کا نام تھا آل عمران. کیوں؟ یہ بات آپ کو آیت 33 سے آنورڈ 36 اور اس کے آگے چلے گی. آل عمران کون تھے, عمران کا گھرانہ کون ہے, اور ان پر اللہ کی کیا عنایات ہوئیں, یعنی آل عمران پر عنایات ربی. اور آیت شروع ہوتی ان اللہ اصطفا سے, چنے ہوئے لوگ, یعنی انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. حضرت مریم کی ماں, جن کا نام روایات میں بی بی حنہ آتا ہے, وہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون تھی. ابھی مریم ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں نے نیت کر لی تھی, انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ, کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے پیٹ کے بچے کو تیری نظر کرتی ہوں. اس کو نظر تبرو کہتے ہیں, نیکی کی نیت. باپ نہیں تھا, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جو بیت المقدس کے ٹیک کیئرر تھے. لیکن ہوا کیا, فلما ودا تھا قالت, کیا کہنے لگی کہ اللہ آپ نے تو مجھے بیٹی دے دی. اس دور میں یہود میں عورتوں کا دین کے لیے خاص ہونا اس کا کوئی رواج نہیں تھا. جیسے آج کچھ مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بند ہیں نا, کہتے ہیں عورتیں نہیں مسجد جا سکتی. تو عورتیں کہتی ٹھیک ہے پھر ہم بازار جائیں گی. फिर हम क्लबों में जाएंगी, मॉल्स में घूमेंगी। इसी तरह उस दौर में भी था। तो जब बेटी हुई तो परेशान हो गई, लेकिन अल्लाह ने बेटे की जगह बेटी देकर क्या बताया कि मैंने इस बेटी से काम लेना है। औरत से जो काम लिया जा सकता था, यानी ईसा की पैदाइश, वो मर्द से नहीं लिया जाएगा। तो क्या पता चला कि जब मरियम पैदा हुई तो उनकी नानी ने, यानी उनकी माँ ने मरियम के बच्चों के लिए भी दुआ कर दी। तो क्या पता चला कि जो नेक माएँ होती हैं वो औलाद को शैतान के शर से महफूज रखने की तमन्ना भी करती हैं और दुआएं भी करती हैं। और साथ ही साथ फिर इसमें आपको मुझे जो एक पैगाम मिलता है वो क्या मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें संवरें, तो पेट से ही, अभी बच्चा पेट में है तो उसकी तरबियत का, आप उसकी तरबियत का सफ़र शुरू कर दें। यानी जितना बच्चा अभी छोटा हो उतनी उसकी तरबियत करना आसान होती है। आप देखिए कि शुरू में किसी चीज़ को मोड़ना चाहें तो वो आराम से मुड़ जाती है, जब बड़ी हो जाएगी तो पक्की होती है। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने, अब अगली आयतों में हज़रत मरियम की जवानी का किस्सा आयत 37 से 38 में बता दिया कि अल्लाह बग़ैर असबाब के भी अता करता है। दुनिया में बच्चे के पैदा होने के असबाब हैं जो हर एक इर्द गिर्द में देखता है, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को किस तरह से पैदा किया, बाप भी नहीं था, हज़रत ज़करिया जो उनके खालू थे उन्होंने उनको पाला। अब जब हज़रत मरियम बड़ी हुई और वो इबादत गुजार खातून थी, तो उनके खालू जब आकर देखते थे कि उनके पास बिन मौसम के फल हैं, तो वो क्या कहते थे कि मरियम कालत हुवा मिन इंदिल्ला। हज़रत मरियम ने उनको अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ मंसूब किया। तो फौरन हज़रत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश आई कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे। तो हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, यहाँ पे ज़करिया ने अपने बारब को पुकारा और क्या दुआ की थी, काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कि अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, इन्नका समीउद दुआ। बूढ़े भी थे, बीवी बाँझ भी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से लोग मायूस नहीं होते। आपके मेरे लिए भी अमल है, अगर आज आप 50 या 60 साल की भी हो चुकी हैं, औलाद नहीं है, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह तआला आप देते हैं। और फिर वही मरियम जब जवान हुई तो वे हज़रत याहिया की मौजज़ाना विलादत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तذکرہ आपको मिलता है। और आयत 42 से 44 में हज़रत मरियम दुनिया की तमाम औरतों पे फौकियत रखती हैं, इनका तذکرہ है। वो बच्चियाँ जो जवानियों को पाक कर लेती हैं, अल्लाह उनको नस्लों के लिए चुन लेता है। तो आज भी अगर एक औरत, एक बच्ची चाहती है कि वो चुनी जाए, तो उसको अपनी जवानी को पाक रखना पड़ेगा। फिर आयत 45 से 47 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत का तذکرہ है कि कैसे बिन बाप के अल्लाह ने उनको पैदा किया और उनको बहुत सारी खूबियाँ भी अता की। क्या पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के फर्जंद नहीं, बल्कि अल्लाह के चुने हुए मुकर्रब, चोजन, क्लोज बंदे हैं। फिर इससे ये पता चलता है कि आसान और मुश्किल का तसव्वुर इंसानों के लिए है, कि बिन बाप के बच्चा पैदा करना मुश्किल है या आसान, अल्लाह ताला के लिए तो इससे कुछ नहीं बईद, के अल्लाह ताला को तो कुछ भी मुश्किल नहीं। और फिर कुन की बात है, अल्लाह जो काम करना चाहते हैं उसको कुन से कर देते हैं। कह लीजिए कि वो अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का इरादा है। फ़इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन, लफ्ज़ भी इरादे के आते हैं, तो अल्लाह ताला वो काम करवा लेते हैं। तो गोया के हज़रत ईसा की इस पैदाइश में बहुत कुछ था। कहानी आगे बढ़ती है, आयत 48 से 49 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। अल्लाह ने इनको मुख्तलिफ मौजज़ात दिए थे, परिंदा मिट्टी का बनाकर उसमें फूंकते थे तो वो जिंदा परिंदा बन जाता था। फिर इसी तरह मादरजात अंधों को बिनाई मिल जाती थी। तिब का बहुत रिवाज था उस दौर में, इसलिए अल्लाह ने हज़रत ईसा को कुछ ऐसे मौजज़ात दिए। और कुछ और जो उनकी बातें थीं, जिसको आप इन आयात के तर्जमे से भी जाकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है, हज़रत ईसा जवान हो गए, अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। तो आयत 50 से 51 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लोगों को बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम को हलाल करवाने आया हूँ। यहूद के उलमा ने बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर छोड़ छेड़ दिया था, मिसप्लेस किया था, अल्लाह ने हज़रत ईसा के ज़रिए से वो चीज़ें की। लेकिन जब भी किसी ने हक पेश किया, मुखालफत हुई, हज़रत ईसा को जो सूली पे चढ़ाया गया था ना, उसके पीछे भी यही बात थी कि वो तनकीद करते थे। उन्होंने सूद को हलाल करार दे लिया था, हज़रत ईसा ने आके उस पर बात की। तो आयत 52-54 में फिर रिएक्शन है, जिसके नतीजे में हज़रत ईसा को आसमानों पे उठा लिया गया और कुछ हवारियों ने उनकी दावत पे लब्बैक कहा। अल्लाह ताला ने उनको मिसाल बनाया, यानी हज़रत ईसा के हवारियों का तज़किरा आयत 52-54 में, और ये आगे भी आएगा। फिर आयत 55-58 को लें तो हज़रत ईसा को आसमानों पे कैसे उठाया गया, यानी रफ़ाए आसमानी की बात हो रही थी। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह दोनों के साथ आसमान पे उठा लिया था, ये चीज़ है। और आयत 59-60 या बिल्कुल पारे का एंड चल रहा है, जिसमें हज़रत ईसा की मिसाल आदम से दी गई। क्यों? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाही का मसली आदम। नसारा का हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ईसा के बाप नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं कि आदम की तो माँ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको भी मना लो। तो गोया के उनको उनकी दलील की जुबान से रोका गया। पता क्या चला कि बाप के बगैर बच्चे को पैदा करना अल्लाह के लिए इतना ही आसान है जितना माँ बाप दोनों के बगैर मट्टी से पैदा करना है। क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अब वो जो नजरान से वफद आया था ना, आगे उनको मुबाहले की दावत है। जब दलाइल से दो गिरोह आपस में बात ना सेटल डाउन करें तो फिर एक दूसरे को दावत दी जाती है। तो फमन हाजक से लेके बिल मुफसदीन तक इनको दावत दी गई। इसमें आपको मुझे एक बहुत खूबसूरत पैगाम मिलता है आयत 64 में, कॉमन ग्राउंड पे दावत दीजिए। दावत का खूबसूरत असलूब क्या है कि शुरू में इख्तलाफी बातें नहीं छेड़नी। आप घर वालों से बात करें या बाहर वालों से, ऐसी इंसाफ वाली बात करें जो सब में बराबर हो, यानी कॉमन ग्राउंड्स पे बात शुरू करके दावत दीजिए। तालव इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, यानी वो बात जो तुम्हारे और हमारे बीच में बराबर है। और वो क्या था? कलिमन सवाद, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको वो भी मानते थे, आज मुसलमान भी मानते हैं। अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, किसी को शरीयत साजी का हक ना देना, ये है वो कॉमन थिंग्स। तो यहाँ पे हज़रत ईसा की कहानी जब पूरी होती है तो आगे अब हज़रत इब्राहिम के साथ उनका ताल्लुक जुड़ता है। आपको याद होगा कि पहले पारे में एंड पे यहूद को भी हज़रत इब्राहिम के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि हर गिरोह उन्हीं के साथ जुड़ता है। तो यहाँ अब अहले किताब को हज़रत इब्राहिम की पैरवी की दावत दी जा रही है कि अगर तुम अपने फोर फादर्स में हज़रत इब्राहिम को देख लो तो वो क्या थे? मा काना इब्राहिम यहूदी यम वला नसरानिया, क्योंकि ये तो मज़हब ही दोनों बाद में शुरू हुए। बिल्कुल वही झगड़े हैं जो आज मुसलमानों के भी इख्तलाफी तौर पे फिर मुख्तलिफ आइमा कराम से निस्बत किया है। तो अम्बिया कराम के साथ भी लोगों का कुछ ऐसा ही मामला होता था। अल्लाह ताला ने अहले किताब को हज़रत इब्राहिम की पैरवी की दावत दी। पता क्या चला? किसी दीन या शख्सियत से निस्बत के लिए इससे मोहब्बत अकीदे की हद तक ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि अमली तौर पे भी ज़रूरी है। आज हम नबी सल्लम से अपनी निस्बत तो जोड़ते हैं, करना क्या है? अमल भी करना है। हक पर अमल ना हो तो सिर्फ निस्बत फ़ायदा नहीं देती। अल्लाह करे हमें भी ये बात समझ आए। और अब पारे कैंट पे 69 से अगर 71 देखें तो इसका टॉपिक लिखिए, अहले किताब की मुसलमानों से दुश्मनी। आप मैं माने ना माने, अल्लाह जो पैदा करने वाला है वो जानता है कि गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से दुश्मनी महसूस होती है। वो दिल में हसद और बुगत महसूस करते हैं। और फिर ख़ास तौर पे आयत 72-74 में शौरी मुनाफ़क़त की बात थी। एक साजिश की थी इस गिरोह ने कि रात को मुसलमान हो जाओ तो दिन में फिर वापस चले जाना अपने दीन पे, ताकि जाकर तुम बता सको कि नहीं, हम तो इस्लाम पे गए थे लेकिन वो तो अच्छा दीन नहीं। ये साजिश थी। आज भी ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ मौजूद हैं जिसको हम मुसलमान समझ नहीं पाते। अब जब इन पिछली किताबों का तज़किरा होता है तो दिल में आता है, ये सारे बुरे थे क्या? नहीं, सब बुरे नहीं थे। अल्लाह अदल का साथ, अदल करने वाला है। आयत 75-77 में देखिए तो बता दिया कि अहले किताब में नेक लोग भी हैं, यानी सबको बुरा नहीं कहते। और वो कितने नेक हैं? इन तामन खुब बेकिनतार युद्धी ही ले, एक दिनार भी उनको दे दोगे तो वो इतने अमानतदार हैं कि वो वापस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो हज़ारों लाखों भी ले लेते हैं तो वापस नहीं करते। क्या पता चला कि मुसलमानों की तरह अहले किताब में भी कुछ लोग नेक मौजूद हैं, और फिर इनके उलमा की खियानतों का तذکرہ है, जो कि पीछे पहले पारे में यहूद के उलमा की थी, यहाँ वापस उसी पे जिक्र है कि वो दुनिया के फ़ायदे लेने के लिए अपनी किताबों को बदल देते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को वईद दी कि क़यामत के दिन ना तो वो उनको देखेंगे, ना उनको माफ़ करेंगे और उनको पाक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इल्म की खियानतों से हम सब को महफूज रखे। क्या पता चला कि अल्फाज और इबारात में तहरीफ करके मज़हब की हैसियत को बिगाड़ने की कोशिश करना उस कौम की एक खासियत थी। अल्लाह ना करे आज उम्मत मुस्लिमा के कुछ दीनदार भी ऐसा ही करें। आयत 79 से 80 में मैसेज क्या है कि किसी नबी के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो शिर्क की तालीम दे, क्योंकि नबी तो शिर्क को मिटाने के लिए आते हैं। अंबिया कराम क्या कहते हैं? कूनू रब्बानी जीन। आयत 79 में आप लफ्ज़ देख लीजिए, रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ, क्योंकि नबी शिर्क की तालीम देगा तो उसके आने का फ़ायदा क्या होगा। और उसके बाद बहुत अहम बात, आयत 81-82 में अंबिया कराम से कहद लिया गया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के नबी आ जाएं तो तुम उनको मानोगे। ये नंबर नोट कीजिएगा, क्योंकि एक अल्लाह के बाद एक होने का वादा है, वो सूरत अल अराफ में हम पढ़ेंगे। यहाँ नबी सल्लम की नबूवत को मानने का एक अहद है। इसकी रोशनी में आज हर यहूदी और नसरानी को मुसलमान होने की ज़रूरत है। और आखिर में फिर बता दिया कि पूरी कायनात का दीन इस्लाम है। इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, हमने पीछे भी देखा था। और अगली बात यह कि हर नबी पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। उम्मत मुस्लिमा नस्ली और कौमी असबियत से पाक है, इसलिए सारे नबियों को मानती है। हम हज़रत ईसा को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, जबकि पिछली कौमें कहीं ना कहीं रुक गईं। और फिर आगे आयत 85 का मैसेज क्या है? क़यामत के दिन अगर कोई इस्लाम के सिवा दूसरा दीन लेकर आएगा तो कबूल नहीं होगा। देखिए, जाली नोट चलता है आपके मुल्क में? आप क्या ऐसे जाली डॉलर हो तो वो अमेरिका में चलेगा? बस यही मिसाल है, जाली दीन क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेंगे। और आयत 86-89 का मैसेज क्या है कि हक पहचान लेने के बाद कुफर करने का इंजाम क्या है? कैसा बंदा अल्लाह की रहमतों से दूर होता है और उस पर फरिश्तों और सारे लोगों की लानत पड़ती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी सारी चीज़ों से बचाए। हक पहचान लेने के बाद कुफर करने का इंजाम है, क्या पता चला गुनाहों की मगफरत और निजात के लिए तौबा और इसलाह दोनों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने के बाद इसको मानने की भी तौफीक अता फरमाए। और फिर आखिरी आयतें पारे की आयत 90-91, इसका थीम लिख लीजिए, कुफर पर अड़े रहने का इंजाम क्या है? कैसे लोग क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना भी देना चाहें तो उनसे कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला दुनिया में ज़िंदगी में तौबा करने की तौफीक दे। ये वो तौबा है जो मौत के वक्त हुई तो कबूल नहीं। इसके बरक्स तौबा का दरवाज़ा हर एक के लिए हर वक्त खुला रहता है। आज भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। आइए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और कुरान में पार्डन यानी कुछ खरीद के कुछ बेच के लेने देने का भी तसव्वुर नहीं है, जो कि आज पार्डन के नाम पे क्रिश्चियनिटी में आम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।